محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بس اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ میں صلہ رحم کروں یا نہیں کروں، میں نے عرض کیا واجب ہے، صلہ رحم نہیں کرے گا زندگی کے اوپر برے اثرات پڑیں گے، اور اگر صلہ رحم کے اندر تجاوز کر جائے، عصبیت کرے، وہ بھی بہت برا ہے. یہ جو کفر کا نظام ہے، اس نے جو انسانوں کی زندگی میں مشکلات ڈالی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے رشتہ داریوں کے نظام کو دھرم برہم کر دیا، اس کو انہوں نے شکست و ریخ سے دوچار کر دیا. نہ صرف رشتہ داریوں کو بلکہ خاندان کو توڑ دیا. اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اکائیاں بن سکتی ہیں، یونٹس بن سکتے ہیں. جیسے آپ دیوار کے اندر بلاک لگاتے ہیں یا اینٹ لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس دیوار کا یونٹ کیا ہے، تو وہ یا بلاک ہے یا وہ اینٹ ہے جس کے اوپر یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے. یہ جو معاشرہ ہے یہ کس اکائی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا یونٹ کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات سے صاف نظر آتا ہے کہ معاشرے کی اکائی خاندان ہے. خاندان کا یونٹ کون ہے؟ ماں باپ. اس کے اوپر ساری بنیاد کھڑی ہے. بس جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ماں ہے، باپ ہے، ان دونوں کا جو احترام ہے، ان دونوں کے جو حقوق ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں. کہ خدا متعال اپنے بعد والدین کا تذکرہ کرتا ہے، کسی اور کی اہمیت اتنی نہیں دیتا جتنی والدین کی دیتا. تو یہ خاندان کی ایک اکائی بنتی ہے کہ بھئی ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کے ذریعے خاندان بنتا ہے. پھر یہ جو خاندان ہوتا ہے یہ معاشرے کی اکائی بنتی ہے. اچھا، اس اکائی کا مطلب کیا ہے، یونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ معاشرے میں آپ نے محفوظ رکھنا ہے وہ اس یونٹ سے حاصل ہوگا تو بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. اگر آپ نے معاشرے میں کوئی اچھائی پھیلانی ہے تو وہ اس یونٹ سے پھیلے گی، اور اگر یہاں سے نہیں پھیلی پھر نہیں پھیلے گی. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. فرض فرمائیے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سچائی کو پھیلائیں، معاشرے کو سچا بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس، میں نے عرض کیا دین اسلام کی تعلیمات میں یونٹ فیملی ہے، اور فیملی میں جو بیس ہے وہ والدین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلی نسل کے والدین کو سچا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اگلی نسل کے بچے ابتدا سے سچے ہوں گے. یونٹ کا یہ مطلب ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے، کام یہاں سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی اس فیملی کو نہ لے تو کیا کرے گا؟ پھر ایک اور راستہ نکالے گا. وہ پورا انحصار کرے گا معاشرے کے انسٹیٹیوٹس پر. مثلا کن انسٹیٹیوٹس پر؟ مثلا اسکولس پر. تو وہ فیملی کو نظر انداز کرے گا، اسکول کو اہمیت دے گا، فیملی کو نظر انداز کرے گا، میڈیا کو اہمیت دے گا، ایکٹیویٹیز کو اہمیت دے گا، اگر کوئی فیملی کو نظر انداز کرے. اچھا، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سمجھ لیں کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک تعارض ایجاد کر دیا ہے، ایک کانٹرڈکشن ایجاد کر دیا. والدین جہاں سے سب کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا اس نے اس کو نظر انداز کیا ہے اور اس کی جگہ کچھ اور چیزوں کو لے کر بیٹھ گیا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال ایک اور کر دوں، عملی مثال. یہ جو آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، کرنل قذافی تھا لیبیا کے اندر، اس نے ایک عجیب نظام بنایا تھا. اس کے نظام میں ایسا تھا کہ جو بچے اسکول جانے کی ایج میں پہنچتے تھے تو اسکول میں جا کر ناشتہ کھایا کرتے تھے، اسکول میں جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور رات کا کھانا جو والدین کے پاس کھاتے تھے اس کے لیے حکومت والدین کو پیسے دیتی تھی. یعنی تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ بچے ہمارے رات کو آپ کے پاس رکیں گے. تصور اس طرح سے دینے کی کوشش کی. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ جب اگر بچے سے والدین کچھ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح سے کرو، اس طرح سے نہ کرو، تو ان کا جو ایک عمومی جواب تھا وہاں پر وہ یہ کہ بھائی آپ نے ہمیں نہیں پالا ہے، ہمیں حکومت نے پالا ہے. جس کسی نے یہ نظام بنایا، کسی بھی نیت سے بنایا، اس نے ایک چیز تباہ کر دی، خاندان. اس نے خاندان تباہ کر دیا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کو بچوں کو پالنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے. نہیں ملنی چاہیے، ان کا حق ہے. اگر وہ اس حد میں ہیں کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو سپورٹ ملنی چاہیے. लेकिन क्या बच्चों के जहन से वालदैन का नाम निकाल देना चाहिए, उनका रिश्ता खत्म हो जाए? ये जो भी करेगा मुसीबत लाएगा, वो अपने आप को तबाह कर लेगा। ये जो वालदैन का किरदार है, ये पीछे नस्ल से सीख कर अगली नस्ल को मुंतकिल करने का किरदार है। हम लोग कैरेक्टर्स को सही डिफाइन नहीं कर रहे। हम लोगों के नज़दीक माँ बाप का किरदार बच्चे पालने वाले का किरदार है। बच्चे को पालना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नज़दीक ये किरदार है कि माँ बाप वो हैं जो बच्चे को पालते, उसको तालीम व तरबियत देते ताकि वो अगली नस्ल के लिए तैयार हो। इस हद तक ये जो दूसरी किस्म है ये अच्छी है, इसको अच्छा जो कोई भी कह रहा है अच्छा कह रहा है, लेकिन एक मुश्किल है, पीछे से रबते को नहीं समझ रहा है। ये पीछे का भी एक रबता है। मसलन मैं आपसे पूछूंगा, क्या मेरे या मेरे वालदैन ने अल्लाह के रसूल को देखा था? किसी तसलसल का हिस्सा थे, पीछे से कोई फिक्र लेकर आए थे, उस फिक्र के ऊपर मेहनत हुई है, उसके बाद मैं और आप यहां तक पहुंचे हैं। हमेशा खानदानों में एक तसलसल है, उस तसलसल की अपनी एक कीमत है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो कोई भी खानदान के अंदर है, खानदान की इकाई को समझने वाला है, वो इस बात को समझ जाए कि इसके बगैर निज़ाम को लेकर चलना नामुमकिन हो जाएगा। और यही वो जगह है जो तरबियत की जगह है। अगर हमें अगली नस्ल को सही करना है, अगली नस्ल को लेकर चलना है, स्कूल की बहुत इम्पोर्टेंस है, मीडिया की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो सबसे अहम जगह है वो खुद खानदान, खुद माँ बाप और उन माँ बाप के अतराफ। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर काम बहुत हसास है, और जितना काम हसास है इसके चैलेंजेस भी बहुत हसास हैं। ख़ानदान के अंदर जो तरबियत के चैलेंज हैं, वो चैलेंज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, और अपने मौजू को एक और मरहला आगे लेके चलेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है वो ये कि बच्चा अपने वालदैन से या अपने ख़ानदान से सिर्फ कही भी बातें नहीं सीखता, शायद ना कही भी बातें कही भी से ज़्यादा सीखता है। हम कुछ चीज़ें कहते हैं, खुदा एक है, नबी अकरम का नाम, ख़ानदान इस्मत का नाम, उनकी असामी ग्रामी, कुछ चीज़ें हम कहते हैं, कुछ चीज़ें कहते नहीं हैं, सिखाते भी नहीं हैं, बच्चा खुद सीखता है। कौन सी चीज़ ज़्यादा असर डालती है, जिसको हम सिखाते हैं या जिसको बच्चा सीखता है? जिसको बच्चा सीखता है। हम जो सिखाते हैं तो उसको एक उसूल जाब्ते के अंदर लाकर मसलन उससे कहते हैं अब हमने तुमको ये सिखाना है, अब तुम ये सीखो, तो वो सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम डायरेक्ट टीचिंग कहते हैं। डायरेक्ट टीचिंग बच्चा सीख तो लेता है, इसका दिलों में उतरना अगला मरहला है। दिलों में उसके कौन सी बात उतरती है? ज़्यादातर वो जो इनडायरेक्ट होती है, जो बिलवास्ता होती हैं, वो उसके दिल में ज़्यादा तेज़ी से उतरती हैं, और वो मामूलन कही भी चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें होती हैं जिनको बच्चे ने खुद ऑब्जर्व कर लिया होता है, उसको समझ लिया होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा एक ऐसे ख़ानदान में रह रहा है जहाँ खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला माँ बाप के हालात अच्छे नहीं हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम इस बच्चे को वैसा ही देख पाएं, एग्जैक्टली वैसा ही हो जिनके हालात अच्छे? इस बच्चे की नफ्सियात पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दुनिया का हर दीन मजहब कायदा उसूल सिवाय चंद नफ्सियात के अंदर मौजूद मुफक्किरीन के इस बात के कायल हैं कि कतअन असर पड़ेगा, कतअन असर पड़ेगा। अब मैंने अर्ज़ करना चाह रहा कि इसमें स्टडीज़ क्या हैं, मैंने कुछ सेकुलर स्टडीज़ के हवाले कुछ जगहों पर आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, लेकिन इसके ऊपर तफसीली सर्वेज होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं कि जिन बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब ये है कि 18 साल पहुँचने से पहले पहले जेल पहुँच चुका है, 18 साल की उम्र में आने से पहले जेल पहुँच चुका है, ये सोसाइटी में बहुत बड़ा एक पीस होता है, टॉपिक होता है जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि भाई ये जो बच्चा है ये 18 साल से पहले जेल कैसे पहुंच गया, इसको स्कूल में होना चाहिए था, इसको कॉलेज में होना चाहिए था, इसको अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ होना चाहिए था, ये जेल में कैसे आया? तो भाई यहाँ पर आपका जुडिशरी का सिस्टम है वो गलत है, अदालती निजाम आपका खराब है जो बच्चे को 18 साल की उम्र से पहले जेल में लाके खड़ा कर गया है, या ये कि इस बच्चे के साथ कोई मुसीबत है, अब इसके ऊपर स्टडीज होती हैं। तो इसके अक्सरियत है काते बच्चे उन फैमिलीज के हैं जिनके माँ बाप के अंदर कोई मुश्किल पेश आई हुई है, अक्सरियत है काते, यानी समझ लीजिए 70% 65% से ऊपर बच्चे वो हैं जिनके वालदैन के अंदर मुश्किल हैं, उनके रिश्तों के अंदर, उनके ताल्लुकात के अंदर मुश्किल पेश आई हुई है। ये मैंने एक तरफ से कहा आपकी खिदमत में, और जो हमने कुछ अरसा तकरीबन 10 साल टीचिंग की मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमने बच्चों के साथ इस बात को समझने की कोशिश की कि कितने फ़ीसद बच्चे ऐसे हैं जिनके वालदैन के साथ प्रॉब्लम है, यानी उनके घरों के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश है। जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इस ये अनऑफिशियल थी एक स्टडी, इसको 8 साल हो चुके हैं, तो अल्लाह करे कि इस वक्त सूरत हाल बेहतर हो। मैं कम से कम अपने उस तजर्बे से समझ पा रहा हूँ कि कम से कम 60% घराने कतअन ऐसे हैं जहाँ पे लड़ाई है, जहाँ पे ठीक ठाक मुश्किल है। 60% मैं कम करके आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो इससे कहीं ज़्यादा ख़राब थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आबादी की आधे से ज़्यादा बच्चों की आबादी नफ्सियाती तौर पर पोटेंशियली बीमार है, नफ्सियाती तौर पर पोटेंशियली बीमार है, यानी उसको बीमार हो जाना चाहिए, अल्लाह बचा ले एक अलहदा मामला है। उसको कोई अच्छा टीचर मिल जाए जो उसको बचा ले, उसे कोई अच्छा माहौल मिल जाए, कोई मस्जिद अच्छी मिल जाए, कोई एक्टिविटी अच्छी मिल जाए, तो वो बच जाए, वरना 50% से ज़्यादा कम अज़ कम इम्कान यह है कि हमारे बच्चों में नफ्सियाती दुश्वारी होगी। क्यों दुश्वारी होगी? क्योंकि ख़ानदान सही नहीं है। अच्छा, अब ये जो ख़ानदान है, क्या फ़र्क पड़ेगा कि कुरान पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं। अगर ये अपने अंदर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो कुरान भी पढ़ें, बच्चे पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं एक एतबार से अर्ज़ कर दूँ, अगर खुदा ना करे ऐसा हुआ कि मसलन बाप बहुत दीनदार है और घर बहुत खराब चल रहा है लड़ाई के एतबार से, तो शायद नाउज़ु बिल्लाह बच्चा दीन से ही नफरत कर बैठेगा, ये भी हो सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर बच्चा अपने वालदैन में से किसी एक से उस बचपने में खुदा ना करे अच्छे जज्बात ना ले सका, तो फिर वो उसकी हर चीज से चिढ़ता है। वो खुदा ना करे अगर अपने बाप से या अपनी माँ से कोई अच्छा जज्बा ना ले सका, तो माँ बाप की तकरीबन हर चीज से चिढ़ने लगता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि बहुत कम उम्र में बेचारे के कच्चे जहन के ऊपर बमबारी हो गई है। अब उसका कच्चा जहन सह नहीं पाता इस बात को कि ठीक है, बंदा दीनदार भी है, नमाज भी पढ़ता है, नमाज की गलती नहीं है, गलती इसकी है। वो ये सोल्यूशन नहीं ले पाता, वो ये तजिया नहीं कर पाता, तो वो जब बुरा लेता है तो पूरे का पूरा बुरा ले लेता है, और उसके बाद खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो दीन से इस वजह से थक गए होंगे कि उनके लड़ने वाले माँ बाप दीनदार थे। अब आप इसके तसव्वुर को ले लीजिए कि माशरे के ऊपर किस मुसीबत से ये बच्चे गुजर रहे होंगे। और मैं आपकी खिदमत में इत्मीनान से कहूंगा कि इन बच्चों की जिंदगी अजाब से कम नहीं होती, अजाब से कम नहीं होती जो इस मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। आपको और मुझे अगर अपनी नस्लों पर रहम करना है, तो पहला काम जिसके ऊपर बे इंतहा मेहनत करनी पड़ेगी वो ये कि खानदान कैसे सही होगा। ये यूनिट है, अगर ये तबाह हो गया भूल जाए कोई इमारत खड़ी होनी है, फिर कोई इमारत नहीं खड़ी होती है। और ये जो वेस्ट के अंदर मुसीबत आई हुई है, इस वक्त इंसान एक अजीबोगरीब सूरत हाल को देख रहा है, वहां पर आप तसव्वुर करें, वहां पर जो आबादी की तनासुब से कत्ल का रेशो है, पिस्तौल से कत्ल का रेशो, वो हमसे कहीं ज्यादा है। हम समझ रहे हैं कि मसलन हम कराची नामन शहर के अंदर रह रहे हैं, और जो दूसरे पाकिस्तान में हमें मिलते हैं तो वो जैसे ही हम उनको बताते हैं कराची में, तो वो एक ठंडी आह भर के कहते हैं अच्छा, मसलन जैसे पता नहीं हम कहाँ से मैदान जंग से होकर आ रहे हैं। उनके पास शहरों में बंदूक से पिस्तौल से कत्ल होने का रेशो कराची से ज्यादा बुरा है। क्यों ऐसा है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनके स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में तालीम नहीं है, या उनके यहाँ मसलन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या उनके यहाँ अदालती निज़ाम नहीं है? सब कुछ है, लेकिन मुश्किल कहीं और से आ रही है। उनके बच्चे सही माहौल में नहीं है, और उसके ऊपर आप मीडिया की बमबारी ले लें, उसके ऊपर गेम्स की बमबारी ले लें और मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ की, तो यहाँ पे आए जो कि हम पहुँच जाते हैं कि अच्छा इतने बड़े काम को करने के लिए कहाँ पे मेहनत करनी है, ये कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही कैसे होंगे। तरबियत का अहम तरीन उनसर। अच्छा अब बस चंद मिनट्स आपके और लूँगा मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर। ज़ाहिर है फिर अशरे चाहिए कि ये आदम हव्वा की औलाद का मामला ये इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। इसको निपटाने के लिए एक दो बस बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा ताकि उन बच्चों पे कोई रहम खाए जिनके सामने ये सारे मसाइल हो रहे होते हैं, वो बेचारे किन मुसीबतों में पड़ रहे होते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़ाहिर है कि ये एक पेचीदा मामला है, वो ये कि अगर मियाँ बीवी की नहीं बन पा रही है तो इसको हम चंद मिनट्स के अंदर सोचें कोई बात कहेंगे कि बन जाएगी, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसूल क्या हो सकता है, कहाँ से लड़ाई की जड़ बन सकती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे ख्याल में जो लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ बनती है वो दो चीज़ों के अंदर है। अगर इसको संभाल लें तो कई चीज़ें संभलती हैं। पहली चीज़ तवक्कुआत कम कर लें, एक्सपेक्टेशंस कम कर लें। ये दो इंसान हैं और ये दो इंसान जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इनकी कुछ तवक्कुआत होती हैं। मसलन शौहर को अपने बीवी में कुछ तवक्कुआत हैं और बीवी को शौहर से कुछ तवक्कुआत हैं जो नफ्सियाती होती हैं, कि बहुत तभी सी बात है कि वो अपना घर छोड़कर आए और ये भी अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ करे, तो इन दोनों को एक दूसरे से कुछ तवक्कुआत होती हैं। अगर ये तवक्कुआत एक तवाज़ुन में रहें, बैलेंस में रहें और पूरी होती रहें किसी हद तक, तो ज़िंदगी जन्नत है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी। लेकिन खुदा न करे अगर एक साइड की तवक्कुआत बढ़ जाएं और ये पूरी ना कर सके, अब क्या होने वाला है? अब ये है कि फिर झगड़ा शुरू होने वाला है। एक साइड ने तवक्कुआत बढ़ाई और दूसरी साइड उन तवक्कुआत को पूरी नहीं कर सकी। वो तवक्कुआत क्या थी? बहुत ही छोटे लेवल पे चले जाएं तो पैसे की तवक्कुआत आ जाए, दूसरे लेवल पे चले जाएं तो नफ्सियाती कुछ तवक्कुआत आ जाएं। वो क्या कि मेरे ऊपर अटेंशन इतनी नहीं है, तवज्जो इतनी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं और माजरत के साथ शायद यहाँ पे कहने की नहीं है, लेकिन चूंकि इसका तरबियत में एक किरदार है और मुझे इसको कहीं ना कहीं अर्ज़ करना है, वरना तरबियत कैसे होगी बच्चों की। तो मिसाल के तौर पर कभी इतनी तवक्को कि उसने कभी रिश्ते का इजहार नहीं किया, ये नहीं कहा कि मुझे पसंद करता है या नहीं करता, ये भी मुश्किल बन जाएगी। है तवक्को, एक पार्टी के अंदर तवक्को है कि दूसरा मुंह से कहे, अच्छा वो जो दूसरा है वो पत्थर का है, उसको कहना आता ही नहीं है। अब वो लाख बताता है कि भाई मैं लकड़ी का हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसकी तवक्को खत्म नहीं होती। अच्छा अब तवक्को है, वो तवक्को पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन बनेगी, उलझन बनेगी, चिड़चिड़ापन आएगा। अब जब इधर से चिड़चिड़ापन आएगा और ये जो बंदा खुदा नहीं कह रहा है, ये नहीं समझेगा कि मेरे ना कहने से ये हो रहा है, अब मामला खराब होना शुरू हो जाएगा। बाज़ वक़्त छोटी छोटी बातों से। तो पहला उसूल क्या है? तवक्कुआत को कम कर लिया जाए। अच्छा तवक्कुआत को कम कैसे किया जाता है? आखिर तक जाए ना, फिर बीच में रोक देंगे, फायदा क्या होगा? तवक्कुआत कैसे कम की जाती हैं? अपने आप को उसकी पोजीशन में बिठाओ और पूछो कि मैं होता तो पूरा कर लेता। दरअसल पोजीशंस चेंज कर ले आप, अपने आप को उसकी पोजीशन में लाओ और खुद को उसकी पोजीशन में, और उसके बाद सोचो कि ये तवक्को मुझे पूरी करनी थी या नहीं करनी थी, और ये तवक्को उसके लिए अगर इतनी अहम है तो मुझे पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हर एक की अपनी एक डिमांड होती है, किसी की कुछ डिमांड है, किसी की कुछ और डिमांड है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है, उसके नज़दीक इस बात की अहमियत है। जितना मेरे नज़दीक किसी और की अहमियत है, इसके नज़दीक इसकी अहमियत है। तो हम अगर अपनी तवक्कुआत को थोड़ा सा नीचे ले आए, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करके, तो फिर मामलात को संभालना निस्बतन आसान है। पहली बात, तवक्कुआत को कम कर लें। दूसरी बात ये कि हम एक दूसरे को दो इंसान समझें जो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ और वो भी एक आज़ाद इंसान है। जितनी मेरी ख्वाहिश पर अमल होना चाहिए, उतना ही उसकी ख्वाहिश पे भी अमल होना चाहिए। ये मुसावात अगर हमने नहीं सीखी और एक के जहन में किसी भी वजह से ये ख्वाब है कि मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए, बस फिर समझ लें कि मामला ख़राब हो गया। अब वो अगर मर्द की तरफ से ख्वाहिश है कि मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए, तो एक और झगड़े की कैफियत, और अगर उस तरफ से ख्वाहिश है कि मेरी ज़्यादा चलनी चाहिए, तो फिर तो मामला पाकिस्तानी माशरे में एक और कैफियत है, उसके अपने मसाइल। जो मुझे दो बातें समझ में आती हैं, पहले तो ये कि तहम्मुल ईजाद किया जाए, टॉलरेंस, एक दूसरे की जगह को समझते हुए, और तवक्कात को कम किया जाए। और दूसरी बात यह कि हमें यह रियलाइज करना पड़ेगा कि यहाँ दो मुस्तकिल इंसान हैं जिनकी अपनी अपनी हैसियत है। कोई एक ये कोशिश ना करे कि सामने वाला बस वही करे जो मैं चाहूँ, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इतदाल करना होगा। यहाँ पे आखिरी इस मामले में अर्ज करूँगा, कुछ ना कुछ लेन देन ज़रूरी है। लेन देन का मतलब क्या है? कुछ मैं छोड़ूँ और कुछ सामने वाला छोड़े, इस लेन देन का होना ज़रूरी है। इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ों को मैं छोड़ूँ जो मैं सोचूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में अहम है, लेकिन उसने भी एक अहम चीज़ छोड़ी है, मैं भी छोड़ देता हूँ। अगर इस उसूल पर चलें, निभाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है, तहम्मुल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को, और फिर सबसे बढ़कर इसमें क्या, एहतराम देना। हम लोग ये समझ रहे होते हैं एहतराम घर के बाहर के लिए होता है। भाई भाई को एहतराम नहीं देता, भाई दोस्तों को दे देता है। बेटा दोस्त को दे देता है, बाप को नहीं देता। तो शौहर अपने दोस्त को दे देता है, बल्कि अपने दोस्त की बीवी को भी दे देता है, अपनी बीवी को नहीं देता। और बीवी इसी तरीके से एहतराम देना होगा आपको, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के कायल होना होगा। दोस्ती अलहदा मामला, बेतकल्लुफी अलहदा मामला, लेकिन एहतराम महफूज, एहतराम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बदतरीन बेहतरामी क्या हो सकती है? अगर दूसरों के सामने किसी के सर पर चिल्लाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि आप दूसरों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब मामला बहुत ख़राब होने वाला है। एक और आखिरी इसमें उसूल अर्ज करूँ, मैं भी इस मामले से फ़ौरन निकलना चाह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। वो ये है कि क्या एक पार्टी का खामोश रहना इस बात पे दलील है कि ताल्लुकात अच्छे हैं? नहीं। अगर कोई एक खामोश है तो क्या इस बात पर दलील है कि ताल्लुकात अच्छे हैं? हरगिज नहीं। क्यों? कब तक खामोश रहे? कभी ना कभी मुश्किल आ सकती है। अब मैंने अर्ज किया, मैं सर्वेज वगैरह को बहुत ज़्यादा रेफर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हकायक मौजूद हैं। एक साइकोलॉजिस्ट अपनी इस काम की महारत के अंदर, वो इतनी महारत रखता था कि किसी भी दो अफराद को, मियाँ बीवी को साथ बिठाता था, उनसे कहता था कि आप मेरे सामने 15 मिनट के लिए कोई गुफ्तगू करें, कोई भी गुफ्तगू, और 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद 85% एक्यूरेसी के साथ, 85% एक्यूरेसी के साथ वो बता देता था कि 5 साल के अंदर तलाक होगी या नहीं होगी। 15 मिनट की गुफ्तगू में 85% एक्यूरेसी के साथ, 85% एक्यूरेट उसका आंसर होता था, बता देता था कि 5 साल के अंदर तलाक होगी या तलाक नहीं होगी। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? बहुत सादा सी बात है, 10-15 मिनट की गुफ्तगू में कतअन ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला दूसरे की खातिर कितना कॉम्प्रोमाइज कर पा रहा है, ये दूसरे के हक पे कितना तजावुज कर सकता है, इसने दूसरे की बात को कितना ग्राउंड देना है। और बहुत एक अहम मामला जो बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनता है, एक पार्टी के जहन में मनफियात कितनी है, नेगेटिव फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं हुस्न जन या सुएजन। तबाही का जो बहुत बड़ा एक जखीरा है वो सुएजन से निकलेगा, और घर को बचाने का बहुत बड़ा एक जखीरा निकलेगा हुस्न जन से। अच्छा सोचना, अगर आप दो पार्टीज हैं जो एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, इसका मतलब है कि मामला चलेगा। अब मैं आपकी खिदमत में तजर्बे से एक बात अर्ज करता चलूं, अगर कभी मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं और आते रहते हैं, अलबत्ता मैं अपनी मशगूलियत की वजह से बात अब बहुत कम देख पाता हूं, पहले ज़्यादा देखता था, तो जो मैं अलहदा अलहदा सिटिंग करता हूं उसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये जितना भी दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं इनके दिल में मोहब्बत बाकी है या ख़त्म हो गई है। अगर एहतराम और मोहब्बत का कुछ हिस्सा बाकी है इसका मतलब है कहानी चलेगी, इसको संभाल सकते हैं, उसको संभाला जा सकता है। लेकिन अगर आपने गुफ्तगू की और आपको पता चला कि अब नफरतों के सिवा कुछ नहीं है, 10% भी मोहब्बत नहीं रही, इसका मतलब यह है कि अब सरेंडर करने का टाइम आ चुका है। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि इससे पहले के दिलों से मोहब्बतें बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, 10-15% भी हो तो वहीं पे मामले को संभाल लिया जाए। मामले को संभाला कैसे जाए, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, बुरे ख्यालात को छोड़ दें, बुरे ख्यालात को जहन से निकाल दें। अगर आपके जहन में आ रहा है ना उसने ये काम इसलिए किया होगा, आप समझ जाइए शैतान है जो पीछे से बोल रहा है, और अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है तो समझ जाइए कि ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, मुखलिस भी हो सकता है लेकिन गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर बैठे बैठे जहन में आ रहा है तो फिर तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये शैतान होगा। अगर आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपके जहन में आ रहा है उसने जो ये किया होगा उसका मकसद ये होगा, तो फिर आप बहुत होशियार हो जाइएगा कि आपके ऊपर शैतान ठीक ठाक हमला कर रहा है। एक नुस्खा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, क्या दोनों पार्टीज हमेशा एक दूसरे की पसंद के मुताबिक करेंगे? नहीं, दो इंडिपेंडेंट हैं, इसकी अपनी पसंद है, इसकी अपनी पसंद है, इसकी अपनी नापसंद है, इसकी अपनी नापसंद है। अच्छा, इसने कुछ किया जो इसको पसंद नहीं है, अब ये क्या करें? तो मैं मशवरे के तौर पे कहता था कि जब कोई ऐसी बात करे सामने वाला जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है तो अकेले में हंस लिया करो, अकेले में हंस लिया करो। तो उसने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अकेले में हंसते हंसते पागल ही हो जाऊं, क्योंकि पागल लोग होते हैं जो मामूलन अकेले में हंसा करते हैं। तो मेरा मशवरा यह होता था कि नहीं, अकेले में थोड़ा सा हंस लो अपने ऊपर कि मुझे बातों का प्रेशर नहीं लेना है, दिमाग को ठंडा रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है। एक मिसाल बहुत सादा सी देते हैं, मैं सोचता हूँ बार बार ख़त्म करूँ और वो बात से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं सादा सी एक मिसाल देते हैं, पूछिए कि भाई आपने एक गिलास पानी हाथ में पकड़ा हुआ है, ये काम मुश्किल है या आसान है? तो जो सही जवाब है उसका, क्योंकि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, देर लग जाएगी, इसका जो सही जवाब है वो ये कि पहले ये बताओ कितनी देर पकड़ना है। अगर एक मिनट के लिए पकड़ना है गिलास को, मुश्किल तो होगा, एक मिनट को यूं लेके पकड़ा रहूंगा इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर 15 मिनट पकड़ना है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अगर 15 सेकेंड पकड़ना है कोई मसला नहीं, पकड़ा जा सकता है। टेंशन भी ऐसे ही है, अगर टेंशन 10-15 सेकंड के लिए आए डैमेजिंग नहीं है, दिमाग ख़राब नहीं करेगा, लेकिन अगर टेंशन कंटिन्यूस आ रहा है, मुसलसल आए जा रहा है, अब दिमाग ख़राब होगा। इस टेंशन के स्पेल को एक आ रहा है, 10 बजे आया, चले जा रहा है, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, इसको तोड़ने का तरीकाकार क्या है? जाके अकेले में थोड़ा सा हंस लो, अपने टेंशन को रिलीज़ करो, ताकि वो जो कंटिन्यूस दिमाग के ऊपर बोझ चल रहा है ये कंटिन्यूस बोझ नहीं होना चाहिए। तो जितने भी दोस्त अहबाब हमारे बेचारे मजलूम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, उन सब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो ये कि आपका कंटिन्यूस टेंशन में होना आपके दिमाग के लिए जहर की तरह है, ये किसी जहर से कम नहीं है। मुस्तकिल प्रेशर ना अपने दिमाग पर डाले ना किसी और के दिमाग पर डालिएगा, उसका भी दिमाग ख़राब होगा, अल्टीमेटली आपका भी होगा। इसका बेहतरीन रास्ता क्या है? टेंशन को रिलीज़ करें, टेंशन को दिमाग से निकालें और थोड़ा सा पुरसकून हो जाए। अच्छा, जो लोग कारोबार वगैरह के मामले में फंस जाते हैं वो बेचारे क्या करें? مثال کے طور پر کوئی اس کا بزنس ہے جو فلاپ ہوئے جا رہا ہے اور ہر روز بری خبر آئے جا رہی ہے، اب کیا کرے؟ یہ بھی یہی کرے، بری خبر آنے دے لیکن ٹینشن کو ریلیز بھی کرے، ورنہ یہ اچھا کسی کے دماغ پہ اگر ٹینشن چڑھ جاتا ہے تو کیا فیصلے صحیح کرتا ہے؟ سب سے تباہ کن غلط فیصلے وہ کرتا ہے جس کے دماغ پہ ٹینشن ہے، اس کے فیصلے بالکل خراب ہیں۔ یہ بالکل اس کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے جس کا اندر کا ٹیمپریچر 60 ڈگری سے اوپر ہوا ہوا ہے، سارے پرزے غلط کام کریں گے، کوئی کام صحیح نہیں ہو کے دے گا۔ آپ کو اپنا ٹیمپریچر کم کرنا ہے، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ ٹھنڈا کیسے کریں؟ روایات موجود ہیں، لکھا ہے کہ بھائی اگر ٹینشن زیادہ ہے، مثال کے طور پر پانی پیو، پانی پینے سے تمہاری ٹینشن میں کمی آئے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لکھا ہے کہ اگر بہت سخت مشکل میں ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، دیکھتا ہے غصے سے بسٹ ہونے والا ہے، تو فرمایا زمین کو ہاتھ لگائے اگر غصے میں ہے، فرماتے ہیں زمین کو ہاتھ لگا۔ یہاں تک روایت میں لکھا ہے کہ اگر غصے میں ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹنے کی کوشش کرے، اگر کمرے کے اندر ہے کمرے سے باہر چلا جائے، پوزیشن چینج کرے۔ کیوں پوزیشن چینج کر رہے ہیں؟ تاکہ بریک آئے، اس کو بریک چاہیے اس وقت۔ یہ جو غصے والا دماغ ہوتا ہے اس کو پہلی چیز ایک بریک چاہیے۔ تو اگر مثال کے طور پر کمرے میں ہے، کمرے سے باہر جائے، پانی پیے، اپنی پوزیشن کو چینج کرے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے، اپنے آپ کو باہر نکالے، بریک دے اپنے آپ کو، اس کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پرولونگ ٹینشن، مسلسل ٹینشن دماغ کے لیے تباہ کن ہے، اس کو اپنے اوپر مت ڈالیں، کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے اس کو ریلیز کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، آپ کے فیصلے اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور غصے میں کبھی فیصلہ مت کیجیے گا۔ اگر آپ ای میل لکھ رہے ہیں، بہت غصہ آپ کو چڑھ رہا ہے، آپ ای میل مت لکھیں، اور سینڈ تو قطن نہیں کیجیے گا، لکھ کے اس کو ڈرافٹ میں رکھ لیں، بعد میں ریویو کر لیجیے گا، بھیجیے گا نہیں ہرگز۔ غصے میں کیا ہوا فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں مولا کے کتنے فرمان ہیں جو اس بات کے اوپر ہے۔ ٹینشن میں غصے میں فیصلہ مت کرو، پچھتانا پڑے گا بعد، بہت مصیبت ہے۔ تو یہ لب لباب ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ بچوں کی تربیت سے۔ بچوں کی تربیت میں ہم نے خاندان سے شروع کیا، پھر خاندان سے منتقل ہوئے اس کی اکائی کے اوپر جو کہ فیملی ہے، پھر اکائی سے آئے میاں بیوی کے اوپر، پھر میاں بیوی کے سلسلے میں عرض کیا کہ تھوڑا سا تحمل کریں، جگہ کو اپنے سمجھنے کی کوشش کریں، ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں اور اگنور کریں تھوڑا چیزوں کو، کبھی کبھی ٹینشن کو ریلیز کریں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اور آپ کے بچے اور زیادہ اچھی زندگی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج۔